जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 19। ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सर्वसाऊनं अनुभागभागमेतो विजत्थदोषस्य संभवोऽनत्ते संपणमिय जिननाहं संकममनुवागतोयरं वोच्छम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पौर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नौवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार अपना चल रहा है, उसमें संक्रमण को देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 150 पर आ गए, 150। अपनी वृद्धि प्ररूप ना चल रही है और उसमें हमने काल देखा, नहीं स्वामित्व हो गया ना अपना, स्वामित्व छह प्रकार की वृद्धि, हाँ काल भी हो गया उसका। काल की बात हमने उच्चारणा के अनुसार देखी थी, अब अंतर की बात देखेंगे 150 पृष्ठ से, 150। देखो पढ़ते यहाँ पर, अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, जब विशिष्ट वृद्धि का अंतर है उसकी बात यहाँ चल रही है। वृद्धि का अंतर है ना, छह प्रकार की अलग अलग वृद्धि है, छह प्रकार की हानि है, किसी विशिष्ट वृद्धि या हानि का जो अंतर है उसका यहाँ अंतर कहा। इतनी विशेषता है कि ओघ से 12 कषाय और 9-9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का भंग भुजगार के अवक्तव्य पद के समान है। कैसे लेना अंतर, एक अंतर बार अवत्य हुआ तो उपशम श्रेणी से उतरते हुए हुआ, अंतर मुहूर्त में कम से कम काल, इन्हें कम से कम अंतर वाला और अधिक से अधिक अंतर उपार्ध पुद्गल पर आप, उपशम श्रेणी पहले भव में एक बार चढ़ के उतरे हैं और अर्धपुद्गल परावर्तन करीबन काल मिथ्यात्व में गया है, फिर बाद में फिर श्रेणी चढ़ी। मनुष्यत्रिक में भुजगार संक्रामक के समान भंग है, वही वो मनुष्यत्रिक में तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा वो घटित होता है, और जब मनुष्यत्रिक में उत्कृष्ट काल बताना होगा तो उसको मनुष्य की जो काय स्थिति है उत्कृष्ट उतनी रखना, पृथक्व पूर्व कोटि। पहले भव में किया फिर उतने भव के बाद किया, क्योंकि मनुष्य में ही रखना है उसको, इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, फिर मिथ्यात्व में गया है, फिर लगातार मनुष्य रहा, फिर अंतिम भव में फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय भागाभाग परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर और भाव, इन अनियोग द्वारों का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र 12 कषाय और 9-9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का भंग भुजगार संक्रामक के अवक्तव्य पद के समान है। यानी नाना जीवों की कहेंगे वो तो अनेक जीव तो इसके अवक्तव्य वाले तो है ही नहीं ना, कभी कोई होगा, और परिमाण में भी हम कहेंगे वो उसके तो संख्यात होंगे जीव नाना जीवों की अपेक्षा, और भागा भाग में कहेंगे अनंत वे भाग प्रमाण है। इस प्रकार अत्यंत सुगम इन अनियोग द्वारों का उल्लंघन करके अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यानी स्वामित्व के बाद उन्होंने उच्चारणा के अनुसार बहुत ही संक्षेप में बाकी अनुयोग द्वारों का यहाँ उल्लेख किया है, अब अल्प बहुत्व को यहाँ बताने जा रहे हैं।
ये बारह कषाय और नौ नौ कषाय है, उसका भुजागत संक्रमक के अवक्तव्य पद के समान है, भुजागार का अवक्तव्य पद के समान है।
भुजागार का अवक्तव्य का अर्थ होता है कि भुजागार अल्पतर अवस्थित और अल्पत अवक्तव्य जो है, भुजागार संक्रमण वाली जो बात है, जब भुजागार कहते तो अकेला भुजागार नहीं, चारों को मिलकर नाम है भुजागार। जब हम राग आदि कहते हैं तो क्रोधमान माया लोग सभी आ गए ना, राग द्वेष भी आ गए उसमें, राग द्वेष सबको मिलकर हम एक शब्द राग लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य सबको मिलकर एक नाम है भुजगार, और वो जो अधिकार का नाम है भुजगार संक्रमण, उसमें चारों की बात है। वहाँ जो अनुभाग विभक्ति का अंतर बताया था, अवक्तव्य का अंतर बताया था, वैसे यहाँ पर भी समझना, क्योंकि अंतर होता है ना, क्या उपशम श्रेणी एक बार चढ़ के उतरा है तो उसका पहले समय में अवक्तव्य हुआ, फिर दोबारा श्रेणी चढ़ के फिर उतरा, फिर दोबारा अवक्तव्य, दो अवक्तव्य के बीच का अंतर हुआ, और लंबा अंतर अर्ध पुद्गल पर आवर्तन। पहले भव में समय को प्राप्त किया, श्रेणी चढ़ के उतरे, बाद में मिथ्यात्व में गए, उतने लंबे काल तक संसार में भटक कर अंतिम भव में फिर उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे है, तब अवक्तव्य किया। अभी हम अल्प बोधों को देखेंगे, 150 पृष्ठ पर आए हैं नीचे, अधिकार की अप्पा बहुवम, अब अल्प बहुत्व को कहते हैं, अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। अभी हमने जो 6 प्रकार की हानि वृद्धि देखी है उसमें भी अल्प बहुत्व बताएंगे। सवत्थ हुआ मिच्छत्तस्य अनंत भाग हानि संकामय, मिथ्यात्व की अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। अच्छा, यहाँ जीवों का अल्प बहुत बता रहे हैं, हानि वृद्धि अल्प है कि वो तो जब उन्होंने बताई थी तभी वो हो गया अपना, हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है इसके बाद हमने देखी थी। तो ये पहले पॉइंट पर अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि ये एक कांडक को विषय करते हैं, यानी यहाँ का जो कांडक है अनंत भाग हानि वाला कांड, वो करने वाले जीव सबसे कम है।
अनंत बहुभाग का हानि करने वाला सबसे कम होगा कि ये कम होगी?
अभी जो बता रहे हैं ना उसमें तो कोई शंका की और गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि लास्ट में जाके अनंत गुण हानि वाले बाद में बताए हैं, पहले अनंत भाग हानि वाले बताए। कहते असंख्य भाग हानि संकामय असंख्य गुणा, उनसे असंख्यात भाग हानि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि अंतिम उर्वंक स्थान से लेकर अनंत भाग हानि का अधवान एक कांडक प्रमाण ही होता है, परंतु इनके वैसे अधवान एक अधिक कांडक प्रमाण होते हैं, इसलिए उसके विषय से प्रकृत विषय असंख्यात गुणा है, इस कारण इनका उनसे असंख्यात गुणत्व सिद्ध है। क्या कहना चाहते हैं? जब हमने देखा था अनंत भागहानि अनंत भागहानि अनंत भागहानि वाले कांडक कितने अलग अलग हो गए, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, वो हमने उत्कृष्ट के साथ कंपेयर करके बताया था, उत्कृष्ट अनुभाग में से अनंतवा भाग घट जाएगा कांडक के द्वारा, तो उसमें छोटे में छोटा कांडक, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, कब तक? जब तक असंख्यात भाग हानि शुरू नहीं होती तब तक। तो उसके लिए कितने हुए ऐसे? तो कहते एक कांडक प्रमाण हुए, एक कांडक प्रमाण, वहाँ अलग अलग कांडकों का प्रमाण हुआ, कांडकों के वेरिएशन, उसको भी एक कांडक कहा। अब कहते हैं अंतिम उर्वक स्थान से लेकर अनंत भागाने का अध्वान एक कांडक प्रमाण होता है, परंतु इनके वैसे अध्वान एक अधिक कांडक प्रमाण होते हैं, इसलिए उसके विषय से प्रकृत विषय असंख्यात गुणा है, इस कारण इनका उनसे असंख्यात गुणत्व सिद्ध होता है। यानी अनंत भाग हानि के कांडक, हाँ वो सारी वैरायटी मिलकर एक कांडक कहा, वो एक कांडक बताया। जैसे हमने जब हमने षट्स्थान की बात देखी थी तो वहां कांडक का वो, वहां तो कांडक घात नहीं होता है, परंतु वहां कांडक किसको कहते हैं, ये लगातार ऊ कितने बार होता है, तो सुचंगुल के असंख्या कई बार, उसको कांडक कहा था। यानी कांडक प्रमाण बार होता है ऐसा कहा था। ऐसे यहाँ ये कांडक की बात चल रही है, इसका कांडक कितने का है, जो आवली का संख्या तो भाग वाला है। तो अनंत भाग हानि का कांडक उतना ही नहीं, उतने ही वो होते हैं, उतने ही वेरिएशंस होते हैं, परंतु असंख्यात भाग हानि के वेरिएशंस ज्यादा हो गए, इसलिए उसमें जीवों की संख्या भी ज्यादा होगी, वो करने वाले जीव भी ज्यादा हो गए, ये बात कहना चाहते हैं। यहाँ जीवों की संख्या लेनी है, हाँ हाँ, उसमें कांडक उसमें अधिक, हाँ बराबर है,
नंबर ऑफ कांडक जो
नंबर ऑफ कांडक ज्यादा हो गए, हाँ नंबर ऑफ स्थान अधिक अलग हो गए, असंख्यातवा भाग असंख्यातवा भाग जिसमें घटता है। अब संखेज भाग हानि संकामय या संखेज गुणा, उनसे उनसे की बात है, असंख्यात भाग हानि के जितने जीव है उनसे संख्यात भाग हानि के संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। यथा एक अधिक अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि के अधवान प्रमाण से एक संख्यात भाग हानि अधवान को करके इस प्रकार के दो तीन चार इत्यादि क्रम से गिनने पर उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धमात्र अधवानों को ग्रहण कर संख्यात भाग हानि का विषय होता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमने देखा था ना उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें से ये छोटे में छोटा कांडक हुआ, अनंत भाग हानि वाला हुआ, उसके आगे यहां भी अनंत भाग हानि हुई, परंतु इसके लिए हमने दो चरम और द्विचरम दोनों को गिनते हैं, क्योंकि दोनों का मिलकर घात किया। ऐसे इतने स्थान चले आगे नीचे, यहां तक सारे अनंत भाग हानि वाले ही कांडक हैं, तो कितने हैं, तो वही एक दो तीन चार इतने
हैं।
अब असंख्यात भागहानि यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ तक तो अनंत भागहानि है, यहाँ से असंख्यात भागहानि का पहला स्थान शुरू हुआ, तो ये एक अधिक है ना, एक अधिक कांडक प्रमाण है। यानी यहाँ तो हमने 1 2 3 पर मान लेते हैं, यहाँ 10 गिने, तो इसका प्रमाण वो तो 11वां हो जाएगा, उसमें भी इतने सारे का तो घात हो ही गया है, इन सारों का घात करके आगे चला गया हो, फिर इसके जो स्थान हो गया अलग अलग, तो ये असंख्यात भाग हानि के यहाँ तक स्थान है, फिर संख्यात भाग हानि के स्थान चले गए। तो संख्यात भाग हानि के स्थान जब उसको गिनना है, उसका कांडक गिनना है, वो कितना, इसके प्लस एक कांडक कितना बड़ा हुआ, उसका कांडक का प्रमाण अभी यहाँ का कांडक हम देते हैं, कांडक घात का देखते बात, ये उत्कृष्ट कांडक घात भी है, वो अनंत भाग हानि वाला है, फिर असंख्यात भाग हानि वाला कांडक लेंगे तो उसमें वो एक अधिक हो गया। अब ये सारे असंख्यात भाग हानि के कांडक है, इतना बड़ा कांडक हुआ, उसमें 1+ करेंगे तो संख्यात भाग हानि का कांडक शुरू हुआ, यानी यहाँ से संख्यात भाग हानि के कांडक हो गए, वो और बढ़ेगी, वो कांडक का प्रमाण बड़ा बड़ा होगा। यहाँ वो कांडक नहीं लेना असंख्यात भाग वाला, कांडक घात कितना बड़ा होता है, उसमें एक अधिक कर दिया हमने, इसको फिर पढ़ेंगे, देखो आगे आगे जब पढ़े जाएंगे ना क्लैरिटी हो जाएगी।
तो यहाँ पे अल्पबहु तो कांडक के प्रमाण से बता रहे हैं
जीवों के, जीव जीव क्या लिखा है यहाँ, मिथ्या पहले पॉइंट पर क्या लिखा,
जीव सबसे
अनंत भाग हानि करने वाले जीव सबसे कम है, उसके बाद असंख्यात भाग हानि करने वाले असंख्यात गुणे हैं, उनसे संख्यात भाग हानि के संक्रामक जीव
संख्यात
गुणे हैं। देखो ये संख्यात भाग हानि वाला स्पष्टीकरण मैं फिर पढ़ रही हूँ, 554 वाला पॉइंट। यथा एक अधिक अनंत भाग हानि और असंख्यात भाग हानि के अध्वान प्रमाण से, अध्वान इसका कांडक का प्रमाण, कांडक का आयाम, एक संख्यात भाग हानि अध्वान को करके इस प्रकार से 2, 3, 4 इत्यादि क्रम से गिनने पर उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धमात्र अध्वानों को ग्रहण कर, यानी इतने वहां अलग अलग कांडक हो गए। पहला कांडक कितना है, वो अनंत भाग और असंख्यात भाग को मिलाकर उसमें एक मिला दो, ये पहला कांडक है संख्यात भाग आने का पहला कांडक। फिर और दूसरा तीसरा चौथा नीचे कितने स्थान नीचे आना है
संख्या,
तो उत्कृष्ट संख्यात के आधे प्रमाण, कुछ कम अधिक कुछ कर, कहा था उन्होंने साधिक अर्धमात्र, उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धमात्र अध्वानों को ग्रहण कर संख्यात भाग हानि का विषय होता है। वहां तक संख्यात भाग हानि है, उसके बाद संख्यात गुणहानि शुरू हो जाती है, क्योंकि तत्प्रमाण अध्वान जाकर वहां पर द्विगुण हानि की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी दो गुणा हानि वहां पर होती है, तो यहां से संख्यात गुणहानि शुरू हो गई। दो गुणा हानि की 4 गुणा हानि होगी, 8 गुणा हानि होगी, 16 गुणा हानि होगी, क्योंकि एक एक द्विगुणहानि हम करते चले गए आगे। इसलिए विषय के अनुसार उत्कृष्ट संख्यात का साधिक अर्धभाग प्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण गुणकार होता है। उतने उतने जीव भी ज्यादा लिए, संख्येज्य गुणहानि संकामया संख्येज्य गुणा, उनसे संख्यात गुणहानि के संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि संख्यात भाग हानि के संक्रामकों के द्वारा प्राप्त हुए अध्वान के प्रमाण से एक अध्वान को करके वैसे अध्वान जब तक जघन्य परिता संख्यात के एक कम अर्धच्छेद प्रमाण हो जाते हैं तब तक संख्यात गुणहानि का ही विषय रहता है, क्योंकि जब जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण हो जाएंगे, यानी कितनी हानि हुई, असंख्यात गुणा हानि, क्योंकि असंख्यात वे भाग प्रमाण रह जाएगा तब, मिनिमम असंख्यात है जघन्य परिता संख्यात, उसके अर्धच्छेद जितने उतने उतनी बार आधा 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 हुआ, जैसे हमने देखा था ना 16 का अर्धच्छेद 4 है, 4 बार आधा आधा होगा यानी 16वें भाग प्रमाण रह गया और बहुभाग प्रमाण नष्ट हुआ। ऐसे यहाँ जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण बार आधे 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 हुए, उतनी बार आधा हुआ, इसका अर्थ वो जघन्य परिता संख्यात वे भाग इतना शेष रहा, इतना बड़ा कांडक हुआ, तो उसको कहेंगे असंख्यात गुणा हानि। यहां लिखा ना, फिर पढ़ती हूँ 555 को, संख्यात भाग हानि के संक्रामकों के द्वारा प्राप्त हुए अध्वान के प्रमाण से एक अध्वान को करके, यानी यहां से संख्यात गुणा हानि शुरू हुई थी, वैसे अध्वान जब तक जघन्य परिता संख्यात के एक कम अर्धच्छेद प्रमाण हो जाते हैं तब तक संख्यात गुणहानि का ही विषय रहता है, क्योंकि वहां से लेकर असंख्यात गुणहानि की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहां पर भी विषय के अनुसार एक कम जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण गुणकार होता है। मेरा ये सवाल है, जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद कितने हो गए, संख्यात हो गए कि असंख्यात हो गए? हाँ संख्यात हो गए, क्यों जोर से, बराबर हाँ वो तो असंख्यात का मिनिमम में मिनिमम असंख्यात है, अब उसके अर्धच्छेद नेचुरली संख्यात ही हो गए। ऊपर के किसी असंख्यात की बात पूछते तो सोचना पड़ता, परंतु ये सबसे छोटा असंख्यात है तो उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, तो संख्यात हो गए, इसलिए यहाँ संख्यात कहा। तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण गुणकार होता है, ये चार नंबर हो गए अपना भी। अब आगे 152 पृष्ठ पर आए हम। असंख्येज गुणहानि संकामया असंख्येज गुणा, जो गुणहानि का जो प्रमाण है उस प्रमाण में वहां जीवों का भी प्रमाण है, उनसे असंख्यात गुणहानि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। पूर्वानुपूर्वी के अनुसार अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक के असंख्यात वे भाग में ही संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणहानि समाप्त होती है। क्या कहना चाहते हैं, पूर्वानुपूर्वी नीचे से ऊपर अगर हम देखते हैं तो संख्यात भाग वृद्धि वाला जो कांडक है, यानी जहां से जाकर उत्कृष्ट बंद करेंगे तो संख्यात भाग की वृद्धि होती है, उसका नीचे का पॉइंट ये है ना, पूर्वानुपूर्वी से लिया है। ऊपर से आते तो ऊपर की ओर उसके पहला स्थान कहेंगे, नीचे से कहेंगे तो नीचे की ओर उसका पहला स्थान है। तो उसके असंख्यात वे भाग में ही संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणहानि समाप्त होती है, इस कारण से अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक संख्यात भाग वृद्धि कांडक शेष असंख्यात बहुभाग और संख्यात गुणवृद्धि का सकल अध्वान असंख्यात गुणहानि के संक्रामकों का विषय है। क्या कहते हैं, यहाँ पूर्वानुपूर्व पश्चातापूर्वी के कारण घोटाले हैं, फिर भी हम हाँ हाँ वहां पर इसमें फर्क, हाँ वृद्धि वाले और वो हानि वाले में फर्क पड़ता है। असंख्यात देखो हमने कल से क्या देखा था, कल किसके लिए इक्वल लिया था हमने, अनंत भागवान ने उसके लिए केवल लिया था। देखो यहाँ ये उत्कृष्ट था अनुभाग, उसमें से ये अनंत भाग हानि शुरू हुई, अनंत भाग कहाँ तक, यहाँ से असंख्यात भाग हानि शुरू हुई। और वहीं पर वृद्धि वाली बात अगर हम देखते हैं, ऊपर से अगर देखना है तो यहाँ से लेकर जो उत्कृष्ट बंद करेगा तो उसकी असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है, वहां तक ये अनंत भाग हानि के ये स्थान है। ऊपर से नीचे आओ, यहाँ असंख्यात भाग हानि के स्थान है, यहाँ तक आए तो ये वाला जो स्थान है संख्यात भाग वृद्धि वाला स्थान है। अब यहाँ तो संख्यात भाग हानि के स्थान चालू हो गए, परंतु ये उत्कृष्ट संख्यात के आधे प्रमाण जाने पर ही संख्यात गुणहानि वाली चालू हो जाती है। यहाँ डिफरेंस है संख्यात भाग हानि वाले स्थानों में, क्योंकि यहाँ नीचे से हम देख रहे हैं ये संख्यात भाग हानि का पहला स्थान, यहाँ से कोई उत्कृष्ट बंद करेगा तो ये संख्यात भाग वृद्धि वाला स्थान कहलाएगा यहाँ से, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि जब कहते हैं वहां पर, क्योंकि वहां जो भाग वृद्धि कहेंगे तो हम कंपेयर किसके करेंगे, ओरिजिनल से करेंगे, और जहां भाग हानि कह रहे हैं तो इससे हम भाग हानि इसके संख्यात का भाग कम
अपर मोस्ट,
हाँ हाँ, तो उसमें वेरिएशन, अभी संख्यात में वेरिएशन होगा, असंख्यात में उतना फर्क नहीं पड़ा था। अनुभाग की बात चल रही ना यहाँ पर, देखो इस वाक्य को फिर पढ़ेंगे, बीच में कोई यहाँ कांडक शेष क्या उसका क्या कांडक का शेष या मैं प्राकृत पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि कुछ अर्थ में गड़बड़ी लग रही है। 556 पढ़ रही मैं ऊपर से, पूर्वानुपूर्वी चरिम संखेज भाग वड्डी कंडयस्य असंखेज दि भागे चेव संखेज भागानि संखेज गुणहानियो समपंती। पूर्वानुपूर्वी से ने अभी हम एक एक बात, अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ऊपर के अनंत भाग और असंख्यात भाग हानि को अभी भूल जाएंगे, हम संख्यात भाग हानि की बात कर रहे हैं। पहले अनंत भाग हानि के यहाँ से यहाँ तक स्थान थे, असंख्यात भाग हानि के स्थान यहाँ से यहाँ तक थे, फिर ये संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणा हानि के स्थान है, हानि के स्थान। अब हम ये ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ कोई जो संख्यात क्या कहते पूर्वानुपूर्वी के अनुसार अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक के असंख्यात वे भाग में ही संख्यात भागानी और संख्यात गुणानी समाप्त होती है। अब ये असंख्यात व संख्यात भाग वृद्धि वाले स्थान है, वो अंतिम कांडक है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक, तो उसके भी ऊपर जाके इनके संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणहानि समाप्त होती है, उसके पहले समाप्त होती है, और इसके नीचे असंख्यात गुणहानि चालू हो जाएगी। परंतु वृद्धि की अपेक्षा देखेंगे वहाँ तो संख्यात भाग वृद्धि वाले ही स्थान वहाँ पर है, उसके कॉन्टेम्प्रेरी जो बातें हैं उसके समान जो अगर लेते हैं, यहाँ क्या लिखा देखो फिर पढ़ेंगे, पूर्वानुपूर्वी के अनुसार अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक के असंख्यात वे भाग में ही संख्यात भागहानि और संख्यात गुणहानि समाप्त होती है। यानी उसके नीचे अगर हम देखते तो असंख्यात भागहानि उसकी असंख्यात गुणहानि चालू हो जाती है। इस कारण से अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक शेष के कांडक का शेष क्या कहते हैं ये मुझे ऊपर पढ़ना है। तेन कारणेन चरिम संख्येज्य भाग वृद्धि कांडयस्य शेषा असंख्येज्य भागा कांडक के शेष असंख्यात बहु या कांडक का शेष असंख्यात बहु भाग का शब्द लगाना वहां जरूरी है। इस कारण से अंतिम संख्यात भाग वृद्धि कांडक का शेष असंख्यात बहुभाग और संख्यात गुणवृद्धि का सकल अद्वान असंख्यात गुणहानि के संक्रामकों का विषय है। यहाँ क्या कहते हैं, हम वृद्धि की अपेक्षा देखते हैं तो यहाँ संख्यात गुणवृद्धि के ये सारे स्थान हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक पे संख्यात भाग वृद्धि के स्थान हैं, परंतु इसके असंख्यात वे भाग में ही हानि वाले स्थान पूरे हुए। देखो ये संख्यात भाग वृद्धि का यहाँ से स्थान था तो यहाँ से संख्यात भाग हानि भी उतरने वाले की चालू हो गई, तो इतने भाग में संख्यात भाग हानि के स्थान हो चुके और यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्यात गुणहानि के भी स्थान हो गए। यहाँ अगर देखते ये तो क्या है, ये संख्यात भाग वृद्धि के स्थान थे, उसका शेष भाग वो असंख्यात बहुभाग है और पूरे संख्यात गुण वृद्धि के स्थान इतने सारे स्थान यहाँ इसमें देखेंगे हानि की तरफ तो ये सारे असंख्यात गुणहानि के स्थान। इसलिए इसको असंख्यात गुणा का वो स्थानों की अपेक्षा उसको करने वाले जीव भी उसके साथ ले लेना। हाँ ये दोनों ही हो जाते हैं, संख्यात भाग वृद्धि का जो अंतिम जो कांडक है उसके असंख्यात वे भाग में हानि वाले संख्यात भाग हानि भी और गुणहानि भी समाप्त होते हैं। अब उसका जो शेष बहुभाग है संख्यात बहुभाग और फिर नीचे वाला संख्यात गुणवृद्धि वाला जो स्थान है वो सारे इसके किस हानि वाले के क्या होते हैं, असंख्यात गुणहानि वाले के इलाके। इसलिए यहाँ पर विषय के अनुसार अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य असंख्यात अंक प्रमाण गुणकार है। यानी असंख्यात गुणे में गुणकार कितना है,
अंगुल का असंख्यात,
तो अंगुल का असंख्यात भाग। अनंत भाग वड्डी संकामया असंख्येज्य गुणा। देखो हानि में तो पांच हानि का ले, क्योंकि अल्पभूत वृद्धि हानि सब में इकट्ठा ले रहे हैं, पांच हानियों को क्रम से लिया पहले में पहले और छठे नंबर पर अनंत भाग वृद्धि वाले को ले लिया है। ख्याल में यही बात, पहले लिया है मिथ्यात्व का अनंत भाग हानि, वो सबसे कम है, असंख्यात भागाने वाले असंख्यात गुने हैं, संख्यात भागाने वाले संख्यात गुने हैं, संख्यात गुनाहानी वाले भी संख्यात गुने, उनसे भी
असंख्यात गुना,
असंख्यात गुनाहानी वाले असंख्यात गुने थे। पांच हानि के बाद अभी अनंत भाग वृद्धि वालों को लिया, उनसे अनंत भाग वृद्धि के संक्रामक जो असंख्यात गुने हैं।
यहाँ से आगे सब अध्वान का प्रमाण, चतुर्गुण का संख्यात विभाग प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर चतुर्गुण का
उसकी बात नहीं करेंगे, पहले अल्पभूतव देख लेते हैं। उनसे अनंत भाग वृद्धि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे, क्योंकि पूर्वोक्त समस्त हानियों की संक्रामक राशि एक समय में संचित है। पहले की राशि उसमें वो मिला देना पूरी की पूरी, आगे वाला जो प्रकरण है उसमें, उनसे असंख्यात गुणा कहा है ना, क्योंकि कांडक घातों के उस समय को समय को छोड़कर अन्यत्र हानि संक्रम संभव नहीं है, परंतु यह राशि आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा संचित हुई है, क्योंकि पांच वृद्धियों के आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल का उपदेश पाया जाता है। हमने जब काल का इसमें प्रकरण देखा था, किसी वृद्धि का लगातार काल कितना होता है, तो उसमें हमने ये बात देखी थी, पांच वृद्धियों का लगातार जो काल है तो आवली का असंख्यात का भाग है, और अनंत गुण वृद्धि वाला का काल
अंतर्मुख
देखा था लगातार का। नाना जी उनकी अपेक्षा तो सदा काल होगा, एक जीव की अपेक्षा, वहां नाना जी उनकी अपेक्षा तो हमने कुछ उन्होंने चर्चा की ही नहीं है, एक जीव की अपेक्षा ही काला जी की बात हुई थी।
नहीं नहीं, ये तो नाना जी की अपेक्षा है ना,
क्या
ये जो हम लोग गल्प बहुत तो देख रहे हैं,
अल्प बहुत्व की बात नहीं, काल की बात पूछ रहे। एक जीव में अल्प बहुत्व कैसे होगा, जीवों की संख्या कैसे है, वहाँ एक जीव की बात ही नहीं,
नाना जीव की अपेक्षा,
वो काल की बात पूछ रहे।
अच्छा,
काल की अपेक्षा जो कहा ना, पांच वृद्धियों का लगातार काल, वो नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वदा काल होगा, काल के उन्होंने हमने वो अनुभाग विभक्ति में देखा था हमने। वृद्धि विभक्ति में हमने पांच वृद्धियों का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यात होगा, और अनंत गुण वृद्धि का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्गुण।
पेज नंबर कौन सा है,
पेज नंबर 309-310, कल देखा था ना। और हानियों के लिए वो कांडक का जो अंतिम
एक
कांडक होने के बाद एक समय होता है, और मात्र जहाँ क्षपणा होती है अनुसमय अपवर्तन होता है, वहाँ तो अंतर्मूर्त हो सकता है, जैसे सम्यक प्रकृति है, संज्वलन लोग है, उसमें तो होगा अंतर्मूर्त तक, सभी प्रकृतियों में नहीं होगा, वो एक ही जीव की बात होगी, वो अन्य जीवों की बात। अभी हमने जो पढ़ा छठवां नंबर का पॉइंट, पूर्वोक्त समस्त हानियों की संक्रामक राशि एक समय में संचित है, क्योंकि कांडक घातों से उस समय को छोड़कर अन्यत्र हानि संक्रम संभव नहीं। क्या कहना चाहते हैं, अभी तो हमने पांच हानि देखी, कौन सी, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि,
संख्यात गुणा हानि,
असंख्यात गुणा हानि,
अभी अनंत भाग।
ये कब होती है, तो कांडक घात के समय होती है,
एक एक समय के लिए।
तो कांडक घात में जब हानि होती है अनुभाग में, तो एक ही समय के लिए होती है, और यहाँ जो वृद्धि की बात है
असंख्यात,
तो ये वृद्धि कंटिन्यूअस, किसी जीव को बढ़कर बंद हुआ, बढ़कर बंद हुआ, बढ़कर बंद हुआ, तो कंटिन्यूअस अगर वृद्धि होती है कोई, यहाँ तो अनंत भाग वाली ली है, तो आवली का असंख्यात वे भाग काल तक लगातार होगी, तो इतने जीवों को वहां संचय कर दिया। जीव तो नाना जीव है यहाँ पर, परंतु एक जीव के लिए आवली का असंख्यात वे भाग कंटिन्यूस हो सकता है,
तो नाना जीव,
तो उतने जीव वहाँ उतने काल तक अन्य भी जीव करने लगेंगे, तो उस काल में जो संचित है उसको ले लेना, वहाँ एक समय वाली बात थी, इसलिए वहाँ जीवों की संख्या कम थी, और यहाँ लगातार कोई जीव आवली के असंख्या से भाग काल तक करता है और नाना जीवों को उतने गुणा कर देना हम, इसलिए वहाँ जीवों की संख्या असंख्या गुणा हो जाती है। ख्याल में, वहाँ एक समय के लिए कांडक घात होता है तो एक समय के लिए होता है, अनुभाग का घात होता है, घात अनुभाग कांडक घात का प्रोसेस जो है वो अंतर्मूर्त चलेगा, परंतु तब तक सत्ता का अनुभाग कम नहीं होगा। भले फाली रूप से कुछ परमाणुओं का अनुभाग घट रहा है, जब तक अंतिम फाली नहीं घात होती उसका,
तब तक घात होगा,
तब तक तो सत्ता वाला अनुभाग तो उतना का उतना बना रहेगा। इसलिए पांच हानि में समय एक। अब यहाँ वृद्धि वाली ली, पहले में पहले अनंत भाग वृद्धि वाले जीव है, तो कोई जीव अनंत भाग वृद्धि करता रहे तो आवली की असंख्या से भाग काल तक करता है, इसलिए उतने काल में जितने संचित है जीव उस अपेक्षा से यहाँ असंख्यात गुणा सिद्ध हो जाता। फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ती 557, क्योंकि पूर्वोक्त समस्त हानियों की संक्रामक राशि, समस्त हानियां ने वो पांच हानियां हमने देखी, एक समय में संचित है, क्योंकि वहां तो कांडक घात की बात थी, क्योंकि कांडक घातों के उस समय को छोड़कर यह किया ना उसका, अन्यत्र हानि संक्रम संभव नहीं है। जब जब वो कांडक रूप से घात होगा तभी हानि होगी, परंतु यह राशि, अभी यह राशि ने अनंत भाग वृद्धि वाली राशि, यह का अर्थ क्या है, हाँ, जिसकी हम बात कर रहे ऊपर, अनंत भाग वृद्धि वाली राशि आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा संचित हुई है, क्योंकि पांच वृद्धियों के आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल का उपदेश पाया जाता है। पांच हानियों का काल एक समय, पांच वृद्धियों का जगन्य एक समय, और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात भाग, इसलिए इसका विषय कांडक मात्र रहते हुए भी संचय काल की प्रमुखता से, यानी संचय काल की अपेक्षा से असंख्यात विभाग, यानी असंख्यात गुणा कहा, पूर्वोक्त हानियों के संक्रामक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है और ये असंख्यात गुणा है, उनसे ये असंख्यात गुणा, यानी इनसे वे असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण असंख्यात लोक है, ऐसा कहना चाहिए। अब कहते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि एक समय के बदले आपने आवली के असंख्यात भाग लिए तो उतने गुणा कर दो, तो कहते ऐसा नहीं है। समाधान, क्योंकि हानि के कारणभूत परिणाम अत्यंत दुर्लभ है, प्रायः करके वृद्धि के कारणभूत परिणाम ही संभव है, यानी अधिकांश तो वृद्धि ही होगी, परिणाम ऐसे होंगे कि उसको मिथ्यात्व का अनुभव बढ़कर ही बंधेगा, तो वृद्धि ही ज्यादा करके होगी हानि के बदले। असंख्य भाग वड्डी शंका में या असंख्य गुणा, उनसे असंख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, ये 7 नंबर हुआ इसका। यद्यपि दोनों वृद्धियों का काल आवली के असंख्यात वे भाग रूप से समान है, उसका भी और इसका भी, तो भी पूर्वोक्त वृद्धि के काल से इसका काल असंख्यात गुना है। दोनों का कथन क्या है, आवली का असंख्यात वा भाग, वो भी आवली का असंख्यात वा भाग है और ये भी आवली का असंख्यात वा भाग है, परंतु उसमें असंख्यात गुना का डिफरेंस हम देखते हैं ना। आवली किसको कहना, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात बार लिखो और आपस में गुणा करो तो आवली होगी, तो हमने 5 बार जगन्य परिता संख्यात लिख के गुणा करेंगे तो भी आवली का असंख्यात वा भाग कहेंगे, 50 बार लिखेंगे तो भी आवली का असंख्यात वा भाग कहेंगे, 1,00,000 बार लिखेंगे तो भी आवली का असंख्यात वा भाग, तो पूर्व वाले से ये असंख्यात गुणा है। शंका, यह कालगत विशेषता किस प्रमाण से जानी जाती है, ये जानो हुआ, जानी जाती है, उसका समाधान। महाबंध में कहे गए काल विषय कल्प भूतों से जानी जाती है। कौन से कितना काल है क्या, ये सारे महाबंध में ये बातें आई हुई है। अथवा विषय की अपेक्षा इसके असंख्यात गुणे होने का समर्थन करना चाहिए। यानी यहाँ सूत्र में ही बता दिया है तो उसी से हम जान भी सकते हैं। संख्येज्य भाग वड्डी संख्यामय संख्येज्य गुणा, उनसे संख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। आठवें नंबर पर गुणकार क्या है, उत्कृष्ट संख्यात का साधिक अर्धभाग प्रमाण गुणकार है। हमने देखा ना इतने उसके स्थान होते हैं, क्योंकि विषय के अनुसार उसकी उपलब्धि होती है तथा तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण उपक्रमण संक्रम गुणकार के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। उपक्रमण यानी उस संख्यात भाग बुद्धि वाले कोई ना कोई वहां जीव हो गए उसकी बात है।
ये तो उपक्रमण काल लेना है ना,
उपक्रमण संक्रम गुणकार के द्वारा, उपक्रमण का जो संख्यात समय कहो या जितने हैं उसको वहां गुणकार के रूप में ले लिया। संख्येज्य गुण वड्डी संख्यामय संख्येज्य गुणा, उनसे संख्यात गुण वृद्धि के संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। यहां पर ये थहां शर हुआ, यहां पर भी विषय और काल को प्रधान करके पहले के समान गुणकार का समर्थन करना चाहिए। असंख्येज्य गुण वड्डी संख्यामय असंख्येज्य गुणा, उनसे असंख्यात गुण वृद्धि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण या तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण गुणकार है, क्योंकि विषय और काल के अनुसार यथाक्रम से उसकी उपलब्धि होती है।
क्या आगे बताया अंगुल का संख्यात भाग वो भी असंख्यात होगा और तत्प्रायोग्य संख्यात अंक प्रमाण गुणकार है, इसमें कुछ
ये वृद्धि की बात चल रही है।
हाँ। नहीं, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार क्या है अंगुल का,
क्योंकि यहाँ दो प्रकार से विषय के अनुसार काल के अनुसार यथाक्रम से उसकी उपलब्धि होती है। यथाक्रम है विषय के अनुसार आवली अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण,
अच्छा,
और काल के अनुसार संख्यात अंक प्रमाण गुणकार है। दो ऑप्शंस बताए ना, दो अपेक्षाओं से कथन कर रहे हैं तो उसमें वो अलग अलग उसमें गुणकार बताएंगे। अनंत गुणहानि संख्यामया असंख्येज्य गुणा, देखो ये पांच हानि के बाद पांच वृद्धि बताई थी, पांच पांच दस हो गए है। अब ग्यारहवें नंबर पर अनंत गुण हानि वाले पहले लिए, तो कहते उनसे अनंत गुण हानि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि का संक्रमण करने वाली राशि आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा संचित होकर भी स्तोक विषय वाली होती है, क्योंकि एक शर्त स्थान के भीतर ही उसके विषय का संबंध देखा जाता है। परंतु अनंत गुणहानि का संक्रमण करने वाली राशि यद्यपि एक समय में संचित हुई है तो भी असंख्यात लोक प्रमाण शर्त स्थान प्रतिबद्ध है, इसलिए उनसे यह असंख्यात गुणे यह सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते, देखो वृद्धि की बात है तो हमने देखा ना, ये पहला षट स्थान है, पहले षट स्थान में कितनी कितनी वृद्धि हुई, अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग चलकर अनंत गुण वृद्धि हुई, तो यहाँ से अनंत गुण वृद्धि वाली हुई, इतना बढ़ा कर बांधा तो अनंत गुण वृद्धि हुई, उसके बाद दूसरा षट स्थान शुरू हुआ, तो यहाँ से इसके आगे यहाँ पर पहुंचा, जो इसकी अपेक्षा से अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान है, इसकी अपेक्षा उसको क्या कहेंगे,
अनंत गुण वृद्धि,
अनंत गुण, क्योंकि एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई है उसके ऊपर के जितने स्थान है वो सारे अनंत गुण वृद्धि के ही कहे।
तो वो तो असंख्यात लोक प्रमाण संस्थान के स्थान है।
तो असंख्यात लोक प्रमाण उसने इसीलिए असंख्यात गुणाकार।
पर आगे के पेज में क्या बताया, क्योंकि हानि के कारण वो परिणाम अत्यंत दुर्लभ है, तो यहाँ पे असंख्यात गुणाने के संख्या अरे संक्रामक जीव असंख्यात गुण है, वहाँ पे हानि के परिणाम
हानि वाली बात कही थी।
हाँ।
और यहाँ पर देखो अनंत गुणहानि का संक्रमण करने वाली राशि यद्यपि एक समय में संचित हुई है तो भी असंख्यात लोक प्रमाण शस्थान प्रतिबद्ध है।
हाँ।
अभी हम हानि की बात करें तो ऊपर से हम देखेंगे, एक बार अनंत गुणहानि हुई तो उसके नीचे भी कितने चले जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, अनंत गुणहानि के स्थान कहलाएंगे, इसलिए उसको असंख्यात गुणाकार। अब लास्ट में 12 नंबर पर अनंत गुण वृद्धि संकामय असंख्यज गुणा, उनसे अनंत गुण वृद्धि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, गुणकार क्या है तो कहते अंतर्मूर्त है, क्योंकि हमने देखा था अंतर्मूर्त तक होती है और बाकी तो अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल में है, क्योंकि यद्यपि इन दोनों का विषय एक है तो भी अनंत गुण वृद्धि के संक्रामकों का काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, इस उपदेश का निर्णय सूत्र के बल से होता है। यानी अनंत गुणहानि हुई या अनंत गुण वृद्धि हुई, विषय तो उतना का उतना है, फिर भी अनंत गुण वृद्धि लगातार होने का काल अंतर्मूर्त है और हानि होने का एक कांडक के द्वारा एक समय में ही हानि हुई है, काल वो अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसलिए अवर्थित संकामया संखेज गुणा, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि अनंत गुण वृद्धि के काल से अवस्थित संक्रम का काल संख्यात गुणा पाया जाता है, यानी वो भी अंतर्मूर्त है परंतु उससे संख्यात गुणा बड़ा है। ये मिथ्यात्व के बारे में 13 अल्पभूतो बता दें, पहले 5 हानि ली, फिर 5 वृद्धि ली, फिर अनंत गुण हानि ली, अनंत गुण वृद्धि ली और बाद में अवस्थित ले लिया। सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम सौवत्थोवा अनंत गुण हानि संकामया, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनंत गुण हानि के संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि ये कौन है,
छपना
करने वाले। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में कितने प्रकार की हानि होती है, एक ही होती है अनंत गुण हानि, और वो कब होती है, क्षपणा में, तो क्षपणा करने वाले सबसे कम है, बाकी उनसे कितने गुणा हो गए,
असंख्यात गुणा,
असंख्यात गुणा, क्योंकि असंख्यात ही जीव होते हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि मिलकर, सत्ता वाले जीव लेना है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव उनसे असंख्यात गुणे हो गए। तो पहले पॉइंट पर अनंत गुणहानि वाले लिए सबसे कम है, क्योंकि दर्शन मौखिक क्षपणा करने वाले जीवों का ही उस रूप से परिणमन उपलब्ध हो गया, होया है नहीं, होता है चाहिए, ये बाकी सब उत्कृष्ट अनुभाग वाले हैं और वो तो लगातार अवस्थित ही रहता है उनका। अवक्तव्य संकामय असंख्यज गुणा, उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि हमने देखा औषमिक सम्यक तो प्राप्त करने वाले दूसरे समय में, हाँ, तो ये असंख्यात जीव होते हैं, आवली के निपल्ले के असंख्यात विभाग, क्योंकि पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव उस रूप से परिणमन करते हुए पाए जाते हैं। एक समय की बात है ना, एक समय में इतने जो उपशम समय से प्राप्त करेंगे, चारों गतियों की मिलकर बात है यहाँ, ये तो उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है हमेशा। अवर्थित संकामया असंख्य गुणा, और उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि पूर्वोक्त दो पद वाले जीवों के सिवा सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के सत्कर्म वाले शेष सब जीव अवस्थित संक्रम करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हो, सम्य दृष्टि हो, और सपना वाले भी जब जब वो कांडक चल रहा है तब भी बीच में तो अवस्थित ही रहते हैं। तो हाँ, वो कहाँ लिखा? ये किससे? अवक्तव्यों से असंख्यात गुणे,
पल्ले के असंख्यात विभाग इंटू अवली के असंख्यात,
पल्ले के एक समय में प्राप्त करने वाले जीव पल्ले के असंख्यात विभाग है, तो उतने गुणा कह दिया। सत्ता वाले तो हो गए ना पल्ले के असंख्य, वो तो केवल यहाँ तो मात्र औक्षमिक लिए, वेदक समय दृष्टि है उनके भी अवस्थित ही रहेगा ना, लगातार उनका अवस्थित ही रहेगा लंबे काल तक, नहीं समझे? जब तक सपना नहीं होती है तब तक वो अल्पतर वाला होगा।
पल्ले के असंख्यात विभाग गुणा अवली के असंख्यात विभाग इतना लिया है। हाँ,
अवस्थित रहने के गुणाकार लिए। हाँ, अवस्थित वालों यानी वो भी पल्ले का असंख्या तो विभाग ही, टोटल जीवों की संख्या कितने समय दृष्टि, कैसे कहेंगे पल्ले के असंख्या तो विभाग, फिर भी इससे वो कितने गुणा हो गए ज्यादा, क्योंकि ये तो एक समय में प्राप्त करने वाले हैं और अंतर्मूर्त तक वो रहता है, तो अंतर्मूर्त से गुणा करना पड़ेगा। औषमिक समय तो के लिए वेदक समय दृष्टि इनसे भी असंख्यात गुणे हैं।
तो एक ही समय के लिए होगा ना?
हाँ?
अवक्तव्य जो दूसरे समय,
वही तो मैं कह रही हूँ।
हाँ।
मैं समय दृष्टियों की संख्या बता रही हूँ।
हाँ।
औषमिक समय दृष्टि अवक्तव्य वालों से ज्यादा है, उनसे वेदक समय दृष्टि बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुणे हैं, तो टोटल समय दृष्टियों की संख्या निकालेंगे तो बहुत ज्यादा है, फिर भी उसको असंख्यात ही कहेंगे। उद्वेलना वाले मिथ्या दृष्टि भी इसमें लेना है, तो वो सारे जीव कितने हैं, कितने गुना है, तो कहते हैं कि असंख्यात गुना। और गुणकार कितना है, तो अवली का असंख्यात भाग प्रमाण ले लेते हैं गुणकार। कहा ना यहाँ कि हाँ बहुत बड़ा है अवली, तो सेकंड का कौन सा भाग, और पल्ले तो कितना बड़ा है जिसके असंख्यात भाग में असंख्यात अबज वर्ष होते। अभी वहां तो जीवों की संख्या जब पल्ले में कहते हैं तो वहां के समयों को गिनना और यहाँ के समयों को गिनना, संख्या को लेना, केवल मात्र काल को नहीं लेना, संख्या को लेना, कौन सी संख्या वाले गुणकार से गुणा करना, वो बात वहां बता रहे। शेषाणम कम्माणम सौवत्थोवा अवत्तव संक्रामया, शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। अनंतानुबंधी में तो विसंयोजना पूर्वक संयोजना करने वाले लेना, क्योंकि अनंतानुबंधियों के विसंयोजना पूर्वक संयोग में विद्यमान हुए पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जीव तथा शेष कषाय और नौनु कषायों के भी सर्वोपशमना से गिरते हुए, वो तो संख्या की हो गई ना, संक्रम के प्रथम समय में स्थित हुए संख्यात उपशामक जीव अवक्तव्य भाव से परिणमन करते हुए उपलब्ध होते, इसलिए उनको कहा सबसे स्तोक है, सबसे कम है। अनंत भाग हानि संख्या में अनंत गुणा, उनसे अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। अन्य कर्मों की बात चल रही है यहाँ, क्योंकि ये सब जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। ये एक ये भी करेंगे अनंत भाग, इसलिए सब जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण कहा। शेषाणम संकामया मिच्छत्त भंगम। यानी यहाँ मिथ्यात्व से इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ अवक्तव्य वालों को पहले नंबर पर रखा अल्प में, और फिर अनंत भागाने के जीव अनंत गुना कहा। मिथ्यात्व में अनंत भाग लेने वाले सबसे स्तोक है, स्तोक का अर्थ दोपास नहीं है, वो अनंत है, वे भी अनंत है। और फिर अनंतों में असंख्यात गुना और संख्यात गुना की बात की थी। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ से अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। आदेश से मनुष्य त्रिक में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, क्योंकि अवक्तव्य वगैरह इसी में घटित होते हैं। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों का भंग अनंतानुबंधी के समान है। शेष सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इस प्रकार वृद्धि संक्रम समाप्त हुआ। मैंने भुजगार के बाद पद निक्षेप देखा और अभी ये वृद्धि देखी। अभी एक तो ठाणानी कायोवाणी, अब विषय किसका चलेगा? अनुभाग के संक्रम स्थान। अनुभाग स्थान हमने देखे थे ना, अब यहाँ अनुभाग संक्रम स्थानों का विचार करते हैं। पहले हमने प्रकृति संक्रम स्थान याद है कुछ देखे थे,
स्वरूप और प्ररूप जो
प्रकृति संक्रमण स्थान कहते देखे थे हमने, प्रत्येक गुण स्थान में या कौन कौन से गुण स्थान है, कितने प्रकृतियों का संक्रम होता है, याद है? कुछ कुछ तो याद होगा। उसमें प्रतिग्रह स्थान और संक्रम स्थान की बात की थी हमने, जितने बंध स्थान बंधने वाली प्रकृति है उसको प्रतिग्रह रूप से लिया था। मिथ्या तुम्हें 22 में संक्रमित होते हैं, तो संक्रमित होने वाली प्रकृतियां कितनी है, तो उसके हमने अलग अलग स्थान देखे थे। मिथ्यात्व में कितने कितने का हो सकता है, 25 का होगा या 28 की सत्ता वाले होंगे तो उसमें से 27 का होगा, इस तरह से हमने देखा था। या अनंतानुबंधी की विसंजना करके आया है आवली में तो उसका नहीं होगा, तो वो 4 कम होगी जाए, तो इस तरह हमने उसके अलग अलग स्थान देखे। 23 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 27 का भी हो सकता है, वो प्रकृतियों की बात थी, यहाँ संक्रमण की बात है। अनुभाग संक्रमण में स्थानों का विचार चलेगा, जब पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। स्थान ने उसके वेरिएशंस अलग अलग बताएंगे। एक तो ठाणानी कायोवाणी, अब इससे आगे अनुभाग संक्रम स्थानों का कथन करना चाहिए। भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि के साथ संज्ञा आदि 24 संयोग द्वारों का कथन समाप्त होने के बाद आगे संक्रम स्थानों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। संज्ञा आदि यानी वो घाती संज्ञा वगैरह हमने देखा था ना, या स्थान संज्ञा है ना, चतुस्थानिक है कि त्रिस्थानिक है कि द्विस्थानिक है, तो हमने पहले फिर सर्व नौ सर्व वगैरह भेद देखे थे, ये सब पूरे हुए हैं। पहले 24 संयोग द्वार पूरे हुए थे, फिर भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि के भी ले लिए 103। अब स्थानों की चर्चा चलेगी। आगे संक्रम स्थानों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है। शंका, यह स्थान प्ररूपणा किस लिए आई है? समाधान, वृद्धि के द्वारा कही गई 6 वृद्धियों और 6 हानियों के, ये हानि बराबर करना, वो क्यों ऐसा हुआ है? हानियों के अवांतर भेदों का कथन करने के लिए यह प्ररूपणा आई है। क्या कहते हैं उसके और भेद करना है, क्योंकि अनंत भाग हानि तो कहीं क्यों, पर अनंत भाग हानि वाला एक स्थान थोड़ा ही होगा। अनंत भाग हानि वाले कितने सारे स्थान है, असंख्यात भाग हानि वाले कितने सारे स्थान है, उसमें से एक एक स्थान को अलग अलग बताना ये स्थान प्ररूपणा है। हमने तो केवल क्या बताया था, 5 प्रकार की हानि है, 5 प्रकार की वृद्धि और अवस्थान है, तो 5 प्रकार की हानि और 5 प्रकार की वृद्धि, तो 12 प्रकार के स्थान हमने कह दिया। परंतु एक एक प्रकार में अवंतर भेद यानी उसके एक एक अलग अलग जो कुछ भेद होगा उसका स्थानों का उसके सब डिवीजन यानी अनुभाग का संक्रमण करने वाले इतने इतने स्थान होंगे। अब एक एक स्पर्धक के डिफरेंस है क्या क्या है वो बताएंगे अभी। देखो क्या समाधान किया, वृद्धि के द्वारा कही गई छह वृद्धियों और छह हानियों के अवांतर भेदों का कथन करने के लिए यह प्ररूपणा आई है। वृद्धि प्ररूपणा के द्वारा काम चल जाता इसलिए इसका कथन करना निरर्थक है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वो निरर्यक हुआ निरर्थक है। कोई कहेंगे ना ये तो वृद्धि के कथन में इसका बात आ गई है, परंतु वृद्धि कौन से टाइप की वृद्धि हुई इतनी हम कह सकते हैं, उसमें एक एक अलग अलग स्थान की कहाँ चर्चा आई है। और भी उतनी वृद्धि है वो विवक्षित स्थान की अपेक्षा वृद्धि कहलाएगी। जितने अनुभाग के स्थान है उसके एक एक स्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो उसके भी वृद्धि के अलग अलग स्थान होंगे।
बहुत बहुत
बहुत बहुत है
असंख्यात लोग
क्योंकि वहां पर नहीं कहे गए अलग अलग प्रत्येक असंख्यात लोक प्रमाण स्थान स्वरूप बंध समुत्पत्तिक हत समुत्पत्तिक और हत समुत्पत्तिक रूप भेदों का यहाँ पर कथन पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, वहां पर जो नहीं कहे गए अभी जो हमने कहे ना स्थान वो उत्कृष्ट स्थान की अपेक्षा से बताया अनंत भाव। हाँ। हर एक के साथ ये लगा लेना अभी
वो तो अनुभाग के स्थान के साथ ये
बिल्कुल होगी, उसकी अपेक्षा से कितनी वृद्धि हानि हुई वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एक बात तो ये। और यहाँ कहते हैं अलग अलग प्रत्येक असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान स्वरूप बंध स्वरूप बंध समुत्पत्ति यानी बंध के द्वारा उत्पन्न हुए, जितना अलग अलग बंध अनुभाग बंध होता है उतने अलग अलग स्थान उत्पन्न होते हैं वो बंध के द्वारा उत्पन्न हुए स्थान कहेंगे। बंध के द्वारा जितने स्थान उत्पन्न हुए उनके इन बिटवीन अनुभाग वाले घात के द्वारा हो सकते हैं। अब जो घात के द्वारा है पहले मान लेते हैं कि बंध के द्वारा जो अलग अलग अनुभाग का बंध हुआ है तो ये बंध के द्वारा इतने अलग अलग स्थान हुए मान लेते हैं। अभी इसका घात होकर इन बिटवीन बहुत सारे स्थान हुए तो ये घात के द्वारा हुए। अब घात के बिन बिटवीन घात घात हत हत लिखा ना इसके इन बिटवीन भी और स्थान उत्पन्न होंगे हर एक के बिटवीन, तो टोटल स्थान कितने ज्यादा हो जाएगी, बंध समुत्पत्ति हत समुत्पत्ति और हत हत, खाली एक बार हत हत नहीं ये हत हत भी हत असंख्यात बार ले लो। वो तो बंध की अपेक्षा अभी हर एक दो बंद के स्थानों के बीच में असंख्यात तो हत स्थान हो गए और दो हतों के बीच में और असंख्यात हत हत हो गए। बंद समुत्पत्ति हाँ तीनों के लिए असंख्यात लोक प्रमाण है यानी दो बंद स्थानों के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण ये हत समुत्पत्ति स्थान हो गए, दो हत समुत्पत्ति के बीच में हत हत हो गए, ये बार एक बार हत हत हुआ फिर दूसरी बार भी हत हत होगा ना। तो उनका यह कथन है। अब कहते हैं जहां संत कम्मठानानी तहां संकमठानानी, जिस प्रकार सत्कर्म स्थान है उसी प्रकार संक्रम स्थान है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई इसमें अनुभाग विभक्ति में। वहाँ क्या कहा, सत्कर्म स्थान जो है वैसे यहाँ संक्रम स्थान भी होंगे। जिस प्रकार बंध समुत्पत्ति आदि के भेद से अनेक प्रकार के सत्कर्म स्थान अनुभाग विभक्ति में विस्तार के साथ कहे हैं उसी प्रकार यहाँ पर संक्रम स्थान भी जानने चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उनसे इनमें विशेष भेद नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विशेष भेद नहीं है, जितना बंद किया है और एक आवली के बाद उतने का ही संक्रमण होगा, तो जितने उसके अनुभाग विभक्ति के स्थान है उतने ही यहाँ संक्रम स्थान हो गए।
ये जो आगे हमने देख क्या है उसको थोड़ा रेफर करके ये करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा पड़ जाएगा।
ऐसा ही है ना। हाँ,
नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
तो ये यही पर रेफर करना है ना, घर में
तो नहीं करना है। क्योंकि आगे ये जो पश्चादानुपमी से ये जो स्थान के भेद बता है ना वहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी आज चुप किया ना हमने।
देखो देखो हम स्थान प्ररूपणा कहेंगे, विभक्ति के अनुभाग विभक्ति के स्थान प्ररूपणा। पेज नंबर है 330। मेरे ख्याल से पांचवी पुस्तक ही पहले पूरी पढ़नी चाहिए थी। यहाँ कहते हैं सत्कर्म स्थान तीन प्रकार के हैं, बंध समुत्पत्ति, हत समुत्पत्ति और हत समुत्पत्ति। जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति बंध से होती है उन्हें बंध समुत्पत्ति कहते हैं। घात किए जाने पर जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति होती है उन्हें हत समुत्पत्ति कहते हैं। घाते हुए का पुनः घात किए जाने पर जिन सत्कर्म स्थानों की उत्पत्ति होती है उन्हें हतहत समुत्पत्ति कहते हैं। ये छच्छ समाना इस नियम के अनुसार, वो तो प्राकृत का उसका यानी व्याकरण का नियम बताएं उसको हम भूल जाएंगे
आगे।
या फिर प्रश्नोत्तर हुआ कि स्थान का कथन बेकार है, छह वृद्धियों से इसकी होती है, जो अभी हमने पढ़ा वही है। फिर आगे 332 पर आना, विशेषार्थ। सत्कर्म स्थान तीन प्रकार के होते हैं। कर्म का बंध होने पर जिस कर्म स्थान की प्राप्ति होती है उसे बंध समुत्पत्ति सत्कर्म स्थान कहते हैं, अर्थात बंध से उत्पन्न होने वाला सत्कर्म स्थान। उस कर्म स्थान के अनुभाग का घात किए जाने पर जो सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है उसे हतहत समुत्पत्ति कर्म स्थान कहते हैं, तथा उस घात से उत्पन्न सत्कर्म स्थान के अनुभाग का पुनः घात करने पर जो सत्कर्म स्थान होता है उसे हतहत समुत्पत्ति कर्म स्थान कहते हैं। यही बात बताइए। पहले हत और फिर हत हत। अब ये कहने के लिए बंध समुत्पत्ति स्थान सबसे थोड़े है बताया। अब कहते हैं यहाँ आगे का विशेषार्थ आना 334 पृष्ठ पर। सूक्ष्म निगोद या जीव का जो सबसे जघन्य अनुभाग स्थान होता है वह सब अनुभाग स्थानों में प्रथम अनुभाग स्थान है। उससे जघन्य कोई दूसरा अनुभाग स्थान नहीं होता। बंध स्थान नहीं होता, नहीं कहा, अनुभाग स्थान की बात कर रही हूं सत्ता वाला। मगर वह अनुभाग स्थान घात से उत्पन्न होता है, कहा ना, बंध से नहीं। और यहाँ कथन बंध समुत्पत्ति स्थानों का है तो उसका यहाँ ग्रहण नहीं होना चाहिए था, परंतु घात से उत्पन्न होने पर भी सूक्ष्म निगोदिया का जघन्य अनुभाग स्थान बंध समुत्पत्ति स्थान के समान ही है। और इसके दो कारण हैं। एक तो यह स्थान अष्टांग और उर्वंग के बीच में उत्पन्न नहीं होता, और दूसरे इसके अविभाग प्रतिच्छेद बंध समुत्पत्ति स्थान के अविभाग प्रतिच्छेदों के बराबर होते हैं। वो अष्टांग रूप होता है या लास्ट उर्वंग रूप होता है उसकी चर्चा यहाँ की है। अब उसकी तो बात हम यहाँ छोड़ देंगे। अब आगे चलकर यह अनुभाग स्थान किसको कहेंगे वो यहाँ 336 पृष्ठ पर आते हैं। 336 ये समाधान जो लिखा है ना सेकंड लाइन पर, उत्कर्षण होने पर अनुभाग स्थान के अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि नहीं होती, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित अनुभाग के अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को अनुभाग स्थान कहते हैं। यानी नीचे का अनुभाग केवल बढ़कर थोड़ा बढ़ गया, परंतु जो सत्ता में जितना उत्कृष्ट पड़ा है उसको कहेंगे अंतिम स्पर्धक, उसका जितना अनुभाग है उसी को अनुभाग स्थान कहेंगे। क्योंकि बंध के बिना उसका उत्कर्षण नहीं बन सकता। ये बात यहाँ पे। अब थोड़ा आगे लेते हम, इन्हें यहाँ एक बात और बताइए कि जैसे प्रदेशों के गलने से स्थिति घात होता है, हमने एक एक निशे गल जाता है, वैसे अनुभाग का घात नहीं होता नहीं। वो तो हमने अभी हमको पता ही है। वो किसके कम है ज्यादा है उसकी बात भी यहाँ
टुमारो।
हाँ हाँ, हम कल देखेंगे इसको। हाँ, कल हम इसको और बढ़ेंगे आगे। ये स्थानों की चर्चा 341 पर आ गई, उसको हम कल देखेंगे। अभी आज यही देखते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्त तन हो सदा देखो।
नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सुप्रस्तावणं। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सुप्रस्तावणं। नमोरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सुप्रस्तावणं। नमोरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सुप्रस्तावणं। नमोरियंताणं, नमो सिद्धाणं।